रोग अच्छा कृष्ण जी तो रह गया और झूफड़ी भी खुशवाली बालक बेरा ना कित पाओगे। बैठ गया एक लोग जाल के नीचे वृक्ष के तला बैठ गया, अरे एक लंगोट तन पर कपड़ा एक भी कोई ना, ने सोची शाम न बढ़ूंगा घर में, दिन में के देखेंगे दुनिया के, कहोगी कृष्ण दौरा गया था सबने बेरा। और उसने बेरा था उसकी घरवाली ने कि सुदामा जी आओगे विपर जी, और वो तो जमा चूक जाएंगे चौकड़ी ने जगह जाएंगे भूल ने, वो सोचेंगे ये मकान भी कहाँ गया। वो ध्यान में बैठी थी कि कब आवे, वो बैठ गया वृक्ष के नीचे जब जाती है शाम के समय, रात्रि में आया था वो, कहने लगी कि चाल घर पर, और इसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रीवा भी खूब तील चाल ला के गई। उसने सोचा या भी गई काम ते, अब भाई मारे घर में पहनने के में था को नहीं, अरियो के काटा रोग तने, ने बोली भगवान कृष्ण ने अपना महल बना दिया, महल बना दिया क्यों कर बना दिया महल, मैं तो वहां उसके साथ ही तो रह रहा था, अक उसने बना दिया, विश्वकर्मा आए थे यहाँ पे और धन भी दे गए, मौज माचरी अपनी। फिर भीतर बढ़कर बहुत रोया, ने बोला जी मैं तो पापी जीव था, मैंने गलत विचार करे आपके प्रति, आप जानी जान हो, क्योंकि तीन लोग के ये मालिक हैं, इतना सुख ये जरूर दे सकते, ये नहीं कह सकते कि ये कुति नकार आ सकती है, लेकिन जो असली संकट है जन्म और मरण का ये कोई ना काट सकते। अब जो सबसे बड़ा दुख है, अब यहाँ पर भगवान कृष्ण को हमने ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक माना, सुदामा का मकान बना दिया बहुत बढ़िया और धन दे दिया। इसके साथ साथ कबीर साहब की हम तुलना करते हैं भगवान की संज्ञा में, एक तैमूरलंग नाम का मुसलमान लोहार था, इतना गरीब था कि समय पर उनकी रोटी भी नहीं मिलती थी एक आधी बार, लेकिन पिछले संस्कार आत्मा गणी बढ़िया थी, कबीर साहब के हंस थे वह। क्या हुआ, उसकी माँ बहुत भागवान थी, उसकी माँ बहुत भागवान थी, कोई भी द्वार पा जाता चाहे आप भूखी सो जाती, अतिथि रोटी खुआया करती। एक दिन कबीर साहब वहां पहुंच जाते हैं, तैमूरलंग 15-16 साल की आयु का लड़का था, गरीब इतना था कि किसी गांव वालों की बकरियों का पाली जाता था, छठे महीने उसको अन्न दे देते थे, कुछ वस्तु दे देते थे, जैसे 6 महीना में पाली को पहले दाने कनक वनक हो जाती वो दिया करते थे, अपने भी एकाध बकरी ले रखी थी, कुछ दूसरों के चराया करते थे किराए पे, और शाम के समय ओवर टाइम करता था एक लोहार के एरन के ऊपर गणमारन का, और उसकी वो दूसरा लोहार जो है उसको भी महीने छठे महीने जो है कुछ दाने वाने दे देता था, कनक वनक सी, इतना टोटे में था बेचारा। माँ बेटा दो थे, पिता था कोना। एक दिन कबीर साहब पहुंच जाते हैं दोपहर का समय, तैमूरलंग खाना खा रहा है अपनी सूखी लुखी रोटी, कबीर साहब वहां जाकर बैठ जाते हैं, तैमूरलंग बोला महात्मा जी खाना खाओगे, कहने लगा भाई भूख तो लगी है आगे तेरी सलाह देख लो। बोला जी ये तो मैंने रोटी खा ली, अभी घर से बनवा कर लाऊं, आप मेरी बकरियों को देखना बेड़ों को पाली, मैं अभी आया, गांव के गोरे बैठे थे 10 किले पर गांव था, अपनी माँ को कहा माँ ऐसे ऐसे एक महात्मा राह चलता भूखा गना है और रोटी चावे है, ने बोला बेटा ही बनाई ताजी, घर में दो रोटी का आटा था दोनों बनाकर तैयार करके और गे लो ली, चल बेटा मैं दर्शन भी कराऊंगी बर्तन भी ले आऊंगी और तुम पाली रह जाना। अच्छा माँ, दोनों माँ बेटा एक लोटा पानी का भरके और थाली में धरकर दो रोटी चल पड़े। आके उसकी माँ कहने लगी महात्मा जी खाना खाओ, महात्मा जी कहने लगे कबीर साहब के बेटी खाना तो मैं जब खाऊं कोई मेरा नाम ले ले, वह भगवान का वजन कोई ले और मेरा सेवक हो तो मैं रोटी खाऊं, ना ऐसे मैं बिना उपदेशी का भोजन खाया ना करूं। आग जी नाम क्या होता है, आत्म कल्याण का एकमात्र मार्ग बेटी नाम ही है, ये जो ईत बकरी तुम करते हो ये तो सर्वनाश का कारण है, ये जीव को हानि देता है 84 में डालता है, और एक नाम दूंगा जो तुम्हें अमर भी करेगा यहाँ तुम्हारे ठाठ कर देगा। ने बोले जी हम तो टोटे में गड़े हैं, मारा धन हो जाएगा, अग धन इतना हो जाएगा माई थरब लिया ना पड़े, अग साचे महाराज जी एक साची को, फिर तो हम नाम ले लेते हैं नाम ले लिया, क्यों? निर्दन तो माया दिखे भाई, भगवान तो पाछे सोचेगा जब थोड़ा बहुत सुख का सांस आवे। और कोडी ने काया दिखे कि मेरी शरीर सुख हो जाए तो भगवान भी बजलू, प्रथम ये सुख हो तो पहला ये काटे का डबंदी छोड़, और जब जाके तू भगवान भगवान बजेगा। दोनों माँ पुत्र ने नाम ले लिया। महाराज ने खाना खा, एक रोटी खाई कुल खा कर रोटी, और वह बुढ़िया इतने नेकने की महाराज जी गणे दुखी सामता है। महाराज जी खाने भी रोटी ना मिलती, कई बार तो जून हो जासे। खा कर रोटी वहां पर एक बेल बांध, बकरी बांधने की बेल पड़ी थी खाली, वह चैन वह करके कट्ठी चौरा ऐसे चार लड़ करके छोरे का सात मारी कड़म नुकड़ा के उठे और फिर लात मारी, फिर मुक्या मंड गए। माई ने सोचा, माई बोली महाराज जी क्या कर रहे हो, क्यों बच्चे ने कोई गलती कर दी? तेरे बेटे ताई सात पीढ़ी का राज दे दिया माई मने। बुढ़िया ने सोची नरा पागल है, खान की रोटी कोई ना और सात पीढ़ी का राज, अच्छा बकान लाग रहे से। उन्होंने सोची को दिमाग में खराबी है इनके, और अपनी दिमाग की खराबी हम दूसरे में देखे, अगर कुदरती बात हो से। ने सोची क्यों, वो भी बेचारी सच्ची अपने स्थिति को देख कर कि रोटी तो समय पर मिलती को ना, सात पीढ़ी का राज कैसे हो गया। साधु बोले सहज स्वभा और जो चाहे सो कर दे, ये पूर्ण भगवान थे। अब पता चला भगवान किसे कहते हैं। इतना कह के और अंतर ध्यान हो गए, दिखाई कौन दिए वहीं से गुप्त। अब बुढ़िया रोई, ओए होए होए, ये तो फरिश्ता थे, ये तो भगवान के अल्लाह के भेजे हुए थे, मतलब चाला पाट दिया, इनके पैर पकड़ने चाहिए थे, ओए होए आछी पापन हो। एक दिन क्या हुआ कि तैमूरलंग श्याम के रात्रि के समय, श्याम के समय एरन के ऊपर थोड़े मारा था घन, ऐसे लोहार के किराए पर जाता था, वहां पर बेचारा अपनी दाढ़ी करता था ओवर टाइम। उसने देखा कि उसके साथ में एरन के साथ से चीटियों का बिल, मैं तो निरी चीटी निकलाई, इतनी चीटी होगी कि काला हो गया वहां का स्थान निरा, और वो सोचने पर विवश हो गया कि इस छोटी सी कीड़ी के बिल में और इतनी कीड़ी कितना आ गई, भाई भगवान तेरा भी चाला ऐसे, मतलब ऐसे एक अट्रैक्शन का कारण बना कि वो याद रहे, सपने में बंदी छोड़ दिखाई दी उसी रूप में जो रोटी खा गए थे। ने बोला तमरलंग वो चीटी देखी थी ना तूने, उसमें नरा खजाना दब रहा उसके नीचे, उस स्थान को तू मोल ले ले। वो बोला महाराज जी मोल तो ले लू, पैसे तो कोई ना, कि तू एक बार जिक्र कर दिए यू काम मेरा से, भगवान जब चाहे ना सौदा हुए बना कर दोनों लोग पहुंचे है। उधर से उसके मन में आ जाती है उस एरन वाले के कि ये स्थान कुछ तंग है, इसको यहां से कोई ले लेना, इस मकान को इस स्थान को थोड़े से, वही साहब 20 गज का सारा सौदा था, और मैं फिर अपना बाहर बना लू, चाहे कुछ है एक साल में पैसे दे दे, मैंने पैसे की विदाब कोई ने कोई लेवणिया बन जा। तो उसने क्या किया, उसने जाके अपनी माँ से कहा, माँ वो महात्मा दिखे सपने में, के कहे थे बेटा, किन्नो कहे थे भाई ऐसे ऐसे वो धन पड़ा है, तुम बताइयो मतना किसी ने एरन मोल ले लो, वो स्थान मोल ले लो। ने बोली बेटा दिखा तो मुझे भी थे रात ने, पर मेरे नो समझ में ना आई, वो कह के रहे थे, कहे थे नो गुड़ा गनाए धन से, गनाए धन से। नो बोला बेटा फिर के एक बार जिक्र कर ले तू जाके। उसने जाके जिक्र किया, ने बोला भाई पैसे कब देगा, अरे स्थान तो दे दूंगा तेरे पास, ब्यों तक कोई ना पैसे का, अगर तेरा नौकर बनकर तारूंगा चाहे कितने दिन में उतर जाए, छह महीने में पैसे मैं तेरे पूरे कर दूंगा, और ना हुए तो मजदूरी आपके कर ही रहा हूं, और नहीं आपके स्थान को छोड़ दूंगा। उसने सोचा गांव के गांव में की जास अपना, फिर ना देगा तो अपना मकान ले लूंगा स्थान, ठीक है भाई। उसने तो अगले दिन अपना पाड़ लेगा सारे सौदे नुआ थे। माँ बेटिया ने डड़े लाकर कच्चे इतनी इतनी दीवार करी, उसके ऊपर झोपड़ी गाली, शाम के समय खोद कर देखा निर्यो मोर सौ रुपया डूला गया, बर्तन भरे पड़े, एक काढ़ी छोटी सी मटकी, जाकर बकरी ले आ गनिए, हफ्ते में बकरी बेच दी, फिर घोड़े ले आ वो बेच दिए। गांव वाले ने सोचा कि इस नगरी वालों ने सोचा कि व्यापार ने हाथ पकड़ लिया, अब उसके पैसे दे दिए, अपने नाम करा ली जगह। अब क्या होता है कि उसने एक बार एक घटना देखी थी, उस लड़के ने जब वो बनी में पाली था जंगल को, जंगल में पकड़ियों का, उसी गांव की एक लड़की को राजा के दूत उठा रहे थे। पहले इसे निकम्मे राजा होते थे, बहन बेटियां की इज्जत सुरक्षित नहीं होती थी। सुंदर लड़की थी गांव की, पानी भरकर आ रही थी और वो ताम टाम रहा करते थे। वो जो ही उसको उठाने लगे, उसने आवाज दी, रे तमरलंग तमरलंग मुझे बचा भाई। तमरलंग अपना डंडा लेकर भाग गया था, उन दूतों का सिर फोड़ दिया और उन नौ करड़ा कूट दिया और फिर वो लड़की को उठाई लेके। उसके बाद उसके मन में ये रह रहकर उठा करता है, भगवान है परमात्मा है अल्लाह, एक बार जब मैं राजा बन जाऊं ना, इस राजा का बकल तारू, इसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी है। मतलब उसके मन में यह ऐसी घर कर रही थी, प्रेरणा रही मन में उसके। फिर उसकी वाइफ फेरू कैसे आई कि ईब मैं इस राजा ने कूटू, पहला था पाछे देखू और कुछ। उसके लिए क्या किया उसने, अपना एरन लाया नया और उसमें तलवार और डाल बनाई गुप्त रूप से, जंगल में ले गया, जंगल में जाके एक एरन डाला, वहां पर ढाल और तलवार बनाई गांव के जवान जवान बच्चों को, क्यों उसमें भूखमरी ज्यादा होती थी, उनको भर्ती कर लिया। उन बच्चों से कहा कि तुम्हें एक रुपया महीने का दिया करूंगा और तुम मेरे सैनिक बन जाओ। एक रुपया पहले तो हजार रुपया बराबर होता था, मतलब कई हजार बराबर, बल्कि दस पांच हजार कह जाए जो भी थोड़े हैं। तो उन्होंने एक और बताना नहीं किसी को, और सबको ये पढ़ा दे कि वो अपनी अपने राजा अपने गांव की लड़की को उठाकर राजा ले गया था ना, उसके दूत उस राजा ने कूटा गया पा। सारे बच्चे हाँ बिल्कुल सही है, क्यों जवान बच्चे तो एक रस होया करे। वहां पर डाल चलानी सिखाया, तलवार चलानी सिखावा। फिर उनको कहा कि अपने रिश्तेदारों को और बुला लाओ, आप अपने रिश्तेदारों के जवान मामा फूफी के सब ने इकट्ठे कर लाए, एक एक रुपये में सब राजी होकर आएंगे और किसी को नहीं बताना। उसने छह महीनों के अंदर कम से कम 4000 सैनिक तैयार कर लिए जंगल के में, वहीं खाना वहीं पकाना वहीं लंगर, और एकदम जाकर राजा पे चारों तरफ से घेर लिया, उस नगरी का राजा घेर लिया। तो राजा ने देखा, क्यों ऐसी राजा था, उसने सोचा भी ना था कि कोई ऐसा जुलम भी हो जाए तेरे संग में। चारों तरफ से उसके दुर्ग को किले को घेर लिया। मंत्री से कहा कि मंत्री देख क्योंकर के बात बनेगी। मंत्री कहने लगा, जी इतनी सेना है, हमने तो कच्चन खा जाएगी, अपने बस का कोई ना हो। अच्छा आज सबने अपने झंडे नीचे कर दिए, सरेंडर कर दिया, राजा को काबू कर लिया। राजा को कूट छेद के अन्य बोला, तन जानता तो मारता ना, पर तू भाग जाए यहां से अपने बच्चा लेकर, क्यों कुदरती गुण होते हैं ये। जब उसने देखा कि वही इसके बिल्ली हो गया, इसने के मारू, जाता रहा यहां से, क्यों हंस था ईश्वर का और परमात्मा ने साथ दिया। तैमूर लंग ने लड़ाई नहीं करनी पड़ी किसी के साथ भी, अपने आप सरेंडर करते चले गए। उसके बाद वह सेना काबू करी, दूसरे नवाब पर चढ़ाई कर दी, वो काबू करा, उसकी सेना काबू करी। चंद दिनों में दिल्ली का बादशाह बन गया तैमूर लंग। ये इतिहास पढ़कर देखना आप कि कितने गरीब घर से उठ के वो क्यों पहुंच गया वहां पे। रोटी तमर लंग को दीनी तात सात बादशाह दीनी, रोटी तमर लंग ने दीनी, उस भगवान को दी तीन, एक रोटी दी थी और सात पीढ़ी का राज दे दिया, नाम दिया और मुक्ति करी माँ बेटिया की, दोनों काम किए। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक उसकी सात पीढ़ी ने राज किया तैमूर लंग की ने। उसके बाद कहा था, माई जो लात और मुक्के मारे है ना, इसके बाद तेरे बेटा का राज खंडमंड हो जाएगा, टुकड़ा में बट जाएगा। औरंगजेब के बाद हिंदुस्तान का राज छोटे छोटे बादशाह बन गए थे, नवाब बन गए थे। ये उस भगवान की थी, आज की नहीं, ये बहुत पहले की लिखी हुई किताब है उसमें ये। तो कहते हैं तैमूर लंग और औरंगजेब तक इतलक शुरू मुराद, यहां तक उनकी वो आशीर्वाद फैला। अब इसने भगवान कोई नहीं मानता और सुदामा के एक महल बनाने कृष्ण जी को मालिक मान लिया, वो भी भगवान वो तीन लोक के और ये भी भगवान ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के। जब जाकर बेरा पट्टा, जब बराबर में दूसरी दुकान लग गएगी, जब नकली असली सौदे का ज्ञान होता है, एक दुकान पर लाए जाओ चाहे वो कुछ भी दे, वो ऐसा बढ़िया दिखा है। इसलिए इस बंदी छोड़ के शरण आने से ही आपको ज्ञान होगा। कार हम विचार करेंगे कि भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को राहत दी, वो राहत भी भगवान ने उससे ज्यादा दी, कबीर भगवान ने उनसे ज्यादा दी। अब हमने कृष्ण जी के बारे में सुना था कि एक बार अर्जुन और कृष्ण राजा मोरध्वज के यहां पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं कि हम भोजन पाएंगे, क्योंकि राजा मोरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज के लिए राज तिलक करने के लिए एक विशेष आयोजन किया हुआ था। पहले कोई भी कार्य जो करते थे राजा जन परमात्मा को प्रथम रखते थे, यज्ञ हवन जैसा भी उनको जानकारी थी ऋषियों द्वारा करवाया करते थे। भगवान कृष्ण और अर्जुन एक माया का शेर बनाकर, माया रूपी शेर बनाकर तामर मोरध्वज के बाग में पहुंच जाते हैं और राजा संत सेवी गना था, साधु का रूप बनाकर गए थे। जब सुना कि एक बहुत ही बहुत शानदार और सुंदर और अच्छी बातें बताने वाले संत आए हैं, राजा और रानी और साथ में उनका लड़का ताम्रध्वज नंगे पैरा भाग लिए, हाथ जोड़कर कहते हैं ऋषिवर भोजन की सुनाओ कि भोजन पाएंगे भाई। ठीक है अभी मंगाते हैं कि पहले हमारे शेर का भोजन खिलाओ और फिर हम भोजन पाएंगे। कहने लगे जी शेर को प्रथम खिला देंगे, क्योंकि यज्ञ में आए हुए संतों का आदर करते हैं, अनादर नहीं करें। वो कहने लगा कि ये मांस खाता है, अग्नि मालूम है अभी मंगाते हैं, मांस ये पशु का नहीं खाता मनुष्य खाता है। अच्छा जी मनुष्य मंगा देंगे, मनुष्य का मिल जाएगा कि कोई पलदार ने मत पकड़ लेना, ये तुम्हारे परिवार मत खाएगा एक को। अच्छा महाराज जी जैसे आपका हुक्म। गरीबदास जी महाराज कहते हैं महिमा की जय संत की, मोर दज लख ले और सिर मांगे टाड़ा नहीं। महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे और सिर मांगे टाला नहीं, मोर दज लख ले। मोर दज को देख लो संत की इज्जत यूं करके देखे कोई संत होता है। अच्छा जी अब यहां पर के था कि उसने ये कहा था कि जो आज इस शेर का भोजन बनेगा वो स्वर्ग में जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि इनकी आगे पाछे नीम तले, स्वर्ग तो ऊपर कोई ना बहुत किसे का भी। कहते हैं स्वर्ग में जाएगा जो आज इस शेर का भोजन बन जाएगा। अब भाई यहां पर विवेक लोभ शुरू होता है। गरीबदास जी कहते हैं विवेक बैराग नाम है त्याग का, 525 माही। अब लोभ और लालच करे तो ईसा करे। अब तीनों परमात्मा को चाहने वाली आत्मा थी, तो मर ताम्रध्वज उनका बेटा और रानी मोरध्वज की पत्नी ताम्रध्वज की माँ और साथ में मोरध्वज, उनको ये मालूम था यदि सिर के जाने से स्वर्ग प्राप्ति होती है, और सिर को तो एक दिन हमारा जाना ही है, और इस तो बढ़िया मौका कब मिलेगा, आदियो शरीर खत्म हो शेर का भोजन बने स्वर्ग मिले। अब तीनों के मन में बेईमाना आ गया। अब बेईमाना करे तो न्यू करे, इनको माए रखे लोभ लालच ने, पर ये लालच करे इस साइड वाला। ताम्रध्वज कहने लगा कि ऐसा है भगवान मैं इस शेर का भोजन बनूंगा, लड़के को राज तिलक कर देते हैं, आप कृपा करो और दोनों माँ बेटा राज करेंगे, मेरा फर्ज पूरा हुआ, मैं तो बोझ सो इनके ऊपर ही है, और मेरा सिर काटो और शेर न खवा दो। अब रानी कहने लगी जी ऐसी बात नहीं बने, देखो मेरे आगे मेरा पति मर जाए फिर मेरा क्या जीना रह गया, ऐसे नहीं फिर मेरा कलंक लग गए, जो कहे विधवा का यो कलंक मैं उठना नहीं चाहती, और तुम पिता पुत्र राज करो, मेरा फर्ज पूरा हुआ, बच्चा आपका हो गया, अब मेरा सिर मैं अपना भोजन और शेर को खिलाऊंगी अपना शेर सिर मतलब शरीर। अब तामरध्वज ने सोचा तू रह गया। तामरध्वज उनका लड़का कहता है पिताजी देखो मैंने मात पिता की सेवा तो कुछ करी को ना, आपके ऊपर बोझ ही बना रहा 17-18 साल तक, और आप बताओ तुम में से एक भी मर गया तो मेरा फर्ज अधूरा रह जाता है, माँ बाप की सेवा मेरे पर बनी को ना, तो मैं ऋण मुक्त कैसे होऊंगा, यानी अपने अपने तगड़मबाजी लाओ एकदम मेरा सूत बैठ जा मरण का। इसको ज्ञान कहते हैं, इसको जानकारी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, और पूर्ण विश्वास कहते हैं संत की बात पे कि आज जो कह रहे हैं ये सच्ची बात है, आज जो भोजन बन जाएगा वो स्वर्ग जाएगा। वो कहने लगा महाराज जी मेरा नंबर ला दो, आप तो पिताजी मेरा फर्ज उतर जाएगा। कृष्ण जी कहने लगे भाई तुम तो ऐसा मौत लग गए भूखा मर जाएगा शेर को, ऐसा फैसला ना करते, चलो मैं फैसला देता हूँ अग जी आप कर दे निर्णय। कृष्ण जी ने कहा कि तामरध्वज अपने लड़के को, तामरध्वज लड़के को और इसके मात पिता दोनों आरे से काटे आधा आधा बीजते हैं, और तब ठीक जब ये शेर खावे अग जी जैसे आपकी इच्छा हुक्म। उसी समय नहा धोकर तामरध्वज को बैठा लिया और एक तरफ पिताजी एक तरफ माँ आर्यपत शर न काटन लाएगी। जब आधा शर कट लिया उस समय कृष्ण जी कहते हैं कि दा अंग तो इधर डाल दियो शेर के आगे और बाया काम नहीं आवे, ये काल का होता है, इसने एक तरफ उगा देना। उस समय तामरध्वज की आंखिया में आंसू आ जाता है लड़के की में जो कट रहा है, और इतने में कृष्ण जी बोले कि भाई मारा कोना काम ही तो रोन लाग गया, मैंने ये कहा था आंखिया मासू भी नहीं आने चाहिए तुम्हारे, रोगे तो यू शेर कोना खाओ तुम फिर राजी हो का भोजन नहीं बना रहे। इतने में वो सिर पूरा कट लिया, मोरदज तामरध्वज कहता है महाराज जी मैं न्यो कोना रोता, मरता मरता बोला लड़का मैं रोता हूँ कि इसना मैं शायद मैंने मैं ये रो रहा हूँ कि मैं नीच आत्मा होऊंगा घने माड़े कर्मों का, मेरा पाप का शरीर है जो कि आधा शेर को खिलाया जा रहा है आधा यू बेकार होगा, इसलिए मैं घने पाप का जीव होऊंगा, इसलिए आधा शरीर मेरे को आपने कहा ना आधा काम आओगा यू किससे काम को ना, तो मैंने ये सोचा कि मैं पापी जीव था पूरा भी काम ना आया आपके। इतने कहते कहते वो मर जाता है। तो उसमें वो उठ कर चल पड़ता है कृष्ण और अर्जुन, कहने लगे भाई तुम तो रोज हो भोजन कौन करांते, दोनों रानी और राजा चरणा में पड़ गए उन महात्मा के कि महाराज जी मैं कोई ना रहूं बालक था इन्हें बेरा कोई ना था मन ने काट दो जाओ मत ना रूस के। रानी कह जी मेरा नंबर ला दो वैसे कति नहीं रहूं, बड़ा प्रसन्न हो गया वापस आ बैठी और कार्ड का आ रही ने और लड़का जीवित कर दिया न्यू का न्यू। बोल सतगुरुदेव। अब यहां बंदी छोड़ कहते हैं कि बिल्कुल इसी के आधार पर हमने उनको भगवान की संज्ञा में लिया ठीक है। अभिमन्यु जो है कृष्ण का बानजा और उनका पांडवों का सर्वनाश हुआ था, उस समय वंश खत्म हो रहा था, अभिमन्यु जीवित नहीं हुआ जब कृष्ण जी वहीं था, वो क्यों ना जीवित किया। अब ये बातें सोचोगे जब जब ज्ञान होगा जब कबीर साहब की वाणी समझ में आती है। ये जो ये करके जाते हैं ये ऑलरेडी पिक्चर है, इन्होंने इतना ही करना वो नहीं कर सकते, इनकी पावर से बाहर है ये नहीं कर सकते थे। अब भगवान भगवान कबीर साहब की महिमा आपको सुनाता हूं, जो हम कथाएं सुनाएंगे ये अनभिज्ञ हैं आपके लिए। अनभिज्ञ क्यों हैं? क्योंकि आपने कभी सुनी को ना, और सुनने से ही ज्ञान होता है। ये कथाएं सुनी हैं तो हमें मन को स्वीकार्य हुई अनहोनी और भगवान माने। एक समय कबीर साहब के 64 लाख से हो चुके थे, ऐसे ऐसे चमत्कार जो सुन के मुर्दे तक जीवित कर दिया करते थे। सिकंदर लोधी की जलन का रोग जो कि मौलवियों से ठीक हुआ ना और हिंदू संतों से हुआ ना और दवाई वैद्य खत्म आ लिए बंदी छोड़ के हाथ लानते ठीक हो गए। सप्रस मात्र से सिकंदर लोधी किंग ऑफ द इंडिया, भारत का जो बादशाह थे, और फिर देखा उसकी हालत चरणा में तो शरय को सिकंदर लोधी। पर ये कथा हमारे तक पहुंची है कोई ना, ये तो 550 वर्ष पुराना इतिहास है, लाख वर्ष पुरानी रामायण को ना हम उसको भी सत मानते हैं, और इसको तो 550 वर्ष तो पीढ़ी दर पीढ़ी बता सकते हैं आदमी के ऐसे ऐसे हुआ था, इसको सत नहीं मानते। एक सम्मन नाम का मनियार था और गरीब इतना था, एक आधी बार उनकी जून भी उग जाती थी, यानी रोटी भी समय पर प्राप्त नहीं होती थी। घर में तीन प्राणी थे, सम्मन सेवू उनका लड़का, नेकी सेवू की मां सम्मन की पत्नी, और तीनों परिवार ने नाम ले लिया बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का। एक बार कमाल नाम का एक मरिया हुआ बच्चा जीवित किया था कबीर साहब ने, मुर्दे को जो जल में बहता जावा था, और वो शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर था उसके आग्रह पर उसकी हट के कारण बंदी छोड़ने या लीला दिखानी पड़ी, और उस लड़के को अपने बच्चे के रूप में रखा हुआ था। वो कबीर साहब की बहुत सेवा करता था, नाम दिया, उसके मन में अभिमान हो जाता है कि मेरे जितनी सेवा कबीर साहब की कोई नहीं कर सकता। एक दिन कबीर साहब के आगे कह दी, कबीर साहब ने सोचा लड़के का मन में अभिमान हो गया, और यो डोबा से सम्मान जीवन, चाहे सेवा का हो चाहे धन का हो, और चाहे दान का हो चाहे भक्ति का हो चाहे सिद्धि का हो जाए, अभिमान परमात्मा ने कति पसंद नहीं है। तो कबीर साहब ने सोचा ला इसके भ्रम न तोड़ो, सेवक तो इसने देखे भी ना अभी तक, जैसे अर्जुन को अभिमान हो गया था कि मेरे जैसे कृष्ण जी आपका कोई साथी नहीं होगा, उसके भ्रम न तोड़न खातिर वहां ले गए थे। शाम का समय था, शेख फरीद और साथ में कमाल और कबीर भगवान, तीनों के तीनों दिन छिपन वाला था, सूर्यास्त होने वाला था, और सम्मन के द्वार पर एक कच्चे से मकान के आगे आगे पौड़ी सी थी, पीछे आंगन था, उससे पीछे मकान है। वो पीछे मकान में बैठे तीनों के तीनों अपने बंदी छोड़ की चर्चा ही गा रहे थे कि हमारे बाग में ना जाने कब भगवान बंदी छोड़ के दर्शन होंगे। आपस में विचार कर रहे हैं कि हमारे गरीब बाग अगर मैं बंदी छोड़ के ऊपर आ सकते हैं, जिनके 64 लाख से जिन राजा तीन तो नरेश थे उनके सेवक, एक तो बीर सिंह बघेला काशी नवाब, बिजली खां पठान मगर का नवाब मुसलमान है, और दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी मुसलमान है, और इसके बाद अन्य इसका यजुर्देव भी उनके सेवक थे, एक राजा था राव यजुर्देव, काफी इतने विचार कर ही रहे थे, इतने में बंदी छोड़ने जाकर बाहर से आवाज लगाई कि सम्मन सम्मन, और तीनों के एकदम कान खड़े हुए कि महाराज जी जैसी आवाज आ रही है। फिर मन में सोचा, हमारे कान बाजे विचार कर रहे थे ना, विचार कर रहे थे, सोच रहे थे शायद वैसी आवाज आई है हमारे द्वार पे, और वो परमात्मा के ऊपर आ सकते हैं, समय को नहीं उन्दोर है ना आनत नाटे को ना, पर समय नहीं। इतने में फिर आवाज दी, भाई सम्मन घर पे है कोई, उसकी नेकी बोली महाराज जी खड़े हैं, आवाज उनकी नो की नो, सम्मन कहना महाराज जी की ताव थे। सेवू ने देखा जाके के महात्मा खड़े हैं तीन, महाराज जी खड़े हैं तीन तीन जने, नेकी ने देखा ओहो ये तो महाराज जी, डांक ठोक दी सारे के सारे नांग उस पिछले घर मा आंगन मा कर पौड़ी मा कर, और खड़े होकर न कहे दीन दयाल आज कैसे आना हो गया, क्यों कर दया करी तुझ जीव की झोपड़ी पे, तीनवा की आंखिया में पानी भराया, मारे ओड बाग मारे घर पर भगवान आ गए। तो उस समय कमाल कहता है कि सम्मन महाराज जी को अंदर भी चालन की कहोगे काड़े खड़े रहोगे, ओहो फिर जैसे सोपन सा टूटा एकदम, बाजे कोई बिछोना ले उठा के सम्मन तो उनके पास बैठ गया, सेव नेकी अंदर घर में चली गई, और इधर साइड में एक और गली लाग गई थी, उधर से एक दूसरा गेट भी था उनका। तो सम्मन थोड़ी देर बाद से कहने लगा महाराज जी भोजन की सुनाओ, भाई भूख लगी है सम्मन, पैदल चल के आए हैं, भाई खाना खाएंगे जरूर। आके कहने लगा नेकी नेकी कहा भोजन बना महाराज के लिए। कहने लगे जी घर पर दाना भी कोई ना, आटा कोई नहीं खत्म हो गया, एक एक रोटी का भी आटा कोई ना। कहने लगा तू किसी तो मांग ला पड़ोसियां कहते हैं। न्यू बोली मैं 3-4 ग्राम गई हूँ जिनसे मुझे उम्मीद थी कि वो आटा दे देंगे, तीनों नाट गया। क्यों नाट गए? कि हम अपने बंदी छोड़ की महिमा गणी गाया करते, हमारे कबीर साहब ने मुर्दा जिंदा कर दिया, हमारे कबीर साहब ने सिकंदर लोधी की जलन ठीक कर दी, न्यू कर दिया। ये लोग हमारी हंसी करते थे, मजाक उड़ाया करते कि वो जुलावा क्या कर सकता है, वो बका हुआ बाउंडर पेल रखा। आज ये इस उद्देश्य से नहीं खाना दे रहे कि आज तो थारे कबीर साहब थारे कोठे भर देंगे, नहीं तो नगरी में कोई आटा दो भर नहीं होता दो आदमियों का तीन का। लेकिन इस उद्देश्य से आज ये निकम्मे अपन पा रहे हैं। जो बोले तू अपना चीर दरिया किसे ते ले तेरा चीर, ये कपड़ा ओढ़ना तार लू और इसने दरियाऊ किसी का गहने इसके बदले दे देगा कोई। यानी बोली मैं इसको भी लेकर गई थी, ये 2-3 जगह तो फटा हुआ है, कोई ना लेता इसने। अब अपनी औरत का चीर तार के गुरुजी खातर भोजन बनाना, इस चीर के ऊपर तो महाभारत होगी थी। और ये भी नीत किसके लिए तेरा ओढ़ना तार के, और अपने गुरु के लिए भोजन सतगुरु खातर भोजन बनवा दू, नहीं वो भी फटा हुआ पाया जमीन पर बैठ गया और कलजा पकड़ लिया। बोला अच्छा पापी जी मैं भी पहली बार भगवान आए, रोटी तक का जोत नहीं, ये भगवान इसे खोटे कर्म प्राणी को पैदा भी क्यों करो थे दाता। वह बोली न्यो रोए काम नहीं चला, रोन आ गया संबंध। नेकी कहने लगी ऐसे रोने से समस्या ना हो, न्यो करो अब तो हाथ जोड़ लो महाराज जी से, कहो महाराज जी सुबह भोजन खिला देंगे। महाराज संत बड़े दयालु होते हैं, इशारों को पकड़ते हैं। और ये माँ अपने आप सुबह वक्ते भोजन बना देंगे। सुबह कहां से बना देंगे कि दोनों पिता पुत्र चोरी कर लेना रात न जाके और महाराज जी का भोजन करवा देना। सेऊ जो लड़का रोजाना सुना करता था कि चोरी करना माँ पाप होता है, वो नीच आत्मा होती है जो चोरी करते हैं, चोरी से अच्छा तो भूखा रह ले वो भी अच्छा होता है। कहने लगे माँ क्या करी आज तू, चोरी करने वालों के नाश होता है, महाराज जी बताते नहीं थे? ने बोली बेटा बात तो तू ठीक कैसे, पर यह चोरी और तरह की होगी, इस चोरी के करने से पाप नहीं बेटा पुण्य होगा। नेकी से सेऊ से नेकी कह सुन बेटा, सुन सेऊ सुरज्ञान, या मैं आकाज है नहीं भाई, चोरी कर दे दान। ने बोला माँ पहला चोरी करे फिर दान करे, पाप तो है ही। बेटा मैं बताऊं तेरे को, ये नगरी वाले आद निस्तर रहे हैं, ये जान का बकवाद करें, ये नादान है, इनको बेरा कोई ना बाता का, इन ये नहीं मालूम कि संतों साथ मजाक बड़ा महंगा पड़ा करे। और जो संत आज इस नगरी से भूखे चले गए या गर्क हो सकती है, ये तो नादान इन बेरा कौन बिजली का हाथ लावे थे। पर इसके लिए बेटा हमने ज्ञान है, हम सत्संगी है, इस अनरत्न उन्हें नहीं देना पुत्र। एक कथा सुनाई उस बच्चे को कि एक नगर में बहुत पैसे वाले व्यक्ति रहते थे और पैसा का पहला काम है मस्ती आना, कोई भी संतों का आदर नहीं करे। एक समय की बात, एक सिद्ध पुरुष अपने शिष्य के साथ और उस नगरी के बाहर गोरा बैठ गया अपनी बाहर वाई, और वो संत क्या करता था, एक शंख बजाता था। समझदार गांव के जो व्यक्ति होते थे पता लग जाता संत बाहर आए, उनके लिए नगरी से बना बनाया और कुछ बिना बनाया सूखा भोजन ले जाते थे, जैसा वो स्वीकार करते वैसा ही दे देते थे, बना बनाया खाते थे तो बना बनाया ले जाते थे, कई महात्मा आप बनाकर खाते हैं तो सूखा सीधा ले जाते थे। उस महात्मा ने 3 बार शंख बजाया जोर जोर तय, कोई नहीं गया रोटी लेकर। उसने अपना शिष्य भेजा कि जा पुत्र ना सुना होगा, रोटी भोजन मांग लिया भिक्षा लिया। लड़का लेकर झोली चल पड़ा, चारों सारे गांव में घूम लिया, जनसा जा वही कह के करके खाया करो, करे बिना ना मिला है। आया सुबह आ गया झोली टांग के, 2-4 गांव 5-7 घरों में गया वापस आ गया। कहने लगे महाराज जी किसी ने भोजन ना गाल्या, महाराज ने सोची कि देर होगी थी शायद, किसलिए सोस आगे होंगे, रोटी का समय नहीं था इसलिए ना डाला होगा, बच्चा है वैसे कह रहा होगा। बेटा सुबह फिर जा तू। सुबह फिर गया, सारे गांव में घूमया, जुड़सा जाओ नौका मस्टंडे, करण की उम्र है तुम्हारी, करके खाओ, हमारे पलदार लग जाओ, कोई का खेत में काम करो। वापस आ गया। संत बोला भाई, जब वो वापस जा रहा था, एक बाहर वाई से एक कुम्हार का घर था, वह बहन विधवा थी, दो तीन तीन चार बालक थे, वो देख रही थी कि महाराज ने रोटी तो मिला कोई ना इस गांव में। वो जब वापस आ रहा था दोपहर सुबह से दस ग्यारह बजे, दस एक बजे से, उसने सोची कि मैं, वो इन्होंने ही बोली कि हो सकता है छोटी जाति वालों के महात्मा लोग भोजन नहीं खाया करते, पर ने सोची कि ये बालक भूखा होगा, माँ ने औरत ने बच्चे की बड़ी चिंता बना कर, कुदरती बात हो, एक छोटा सा बालक मासूम 10-12-15 साल का, रोटी सामने भी ना मिली और पैदल चाल के आए होंगे कालिए। बोली महाराज जी नमो नारायण, कहा बेबे के बात के लगता है भोजन नहीं मिला, हकना को नहीं मिला, सामने भी निकना कि मैं हूँ ऐसे ऐसे कुमार के घर ते छोटी जाति से, और मैं सामने भी नहीं बोली, मन तक रहा था, और अब भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि भूख लगी होगी आपने, कहा माई मन तक गणी भूख लग रही से, मेरे पास ये भोजन बना बनाया है, अगर आप चाहो तो ले जाओ, मेरी जाति ये से। बोला लिया माई गाल तो दे, गुरु जी आदेश देंगे तो खा लूंगा, और ना मन कहेंगे तो मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे कुमार के घर से लिया, वो डलवा ले गए। जाके कहने लगे पुत्र भिक्षा मिली, अगजी ऐसे ऐसे सारे गांव मन में घूमया, किसी ने आबरी बल्कि गाली देने लग गए, डंडे ताई ठा लिए, और बाहर एक बहन थी विधवा बेचारी, और कुमार के घर ते ये भोजन जरूर करवा लिया, मैंने कहा था महाराज जी से बता दूंगा, आदेश देंगे तो खा लेंगे। ने बोला बेटा ठीक सा भोजन पा, रोटी खा ली दोनों ने, और जाकर उस लड़की ने कह दे गांव छोड़ देगी, अपना सामान उठा ले जा। अब उस लड़के ने सोची ई पिटन के काम हो गए, उस रोटी दी और उसी ने कहूं गांव छोड़ दे। ने बोला बेटा बात सुन मैं बताऊ, उसको कह दे कि आज रात को या नगरी रह कोना खत्म हो जाएगी, और उसके कान में बता दिए, किसी को बता देगी तो खैर नहीं है, अपना ठा ले जा गुजड़ा ने, और जहां जाकर रात हो जा रुक जाएगी, उड़ा खाई तो बार बार बसेगी, ये आदेश है, ये मेरा वरदान है उसे। 68 का फल एक है द्वारे संत जमाया, 68 का फल होता है एक साधु को भोजन खिलाना, पर साधु हो कोई। हाँ जी, फिर तो बात सी मच्छी बन गई, जाग कहने लगा बहन महाराज जी ने नूर न्यू कही से, अपना सारा सामान उठा ले जा और चुप करके चल पड़े, जा तू रात हो जा डट जाइये, उड़े तू बस जाएगी, और बताना नहीं किसी को, रात ने या नगरी रह को ना, या तो खत्म होगी। अब उसने संतों की बातों पर विश्वास होता था पहले, कर दिया करते इस काम नहीं है, तो वो तजी अपना फटाफट दर के गधा पर सामान और चलती बनी, 8-7 किलोमीटर जाकर रुक गई, अपना उड़ा गाल का झोपड़ी वो डाल का खाटा का चुकर दे का कपड़े अपना सोगी रोटी बना खाकर, रात्रि के समय भूकंप आया और वो नगरी के जो सारे के सारे व्यक्ति दबकर मर गए, इतना भयंकर उसका ऊपर हलन का असर हुआ कि सारी नगरी खत्म हो गई। अब बेटा संतान गल मजाक की ये अनर्थ हो जाया करे, ये नादान है हमने बेरा पट गया, ये अनरथा मोहन नहीं दे पुत्र, इस नगरी का अन्न संत खाएंगे आशीर्वाद मिलेगा, ये जीवित रह जाएंगे, ये तो माया में कुमत्ती हो गए। फिर ने बोला ठीक सा माँ, फिर हम जाएंगे। साहब से कहा कि साहब सम्मन बोला सुबह रोटी खुवा देंगे बनावांगे महाराज जी, अब ठीक है भाई, अब पानी पिया ना, ये तो भूखा जाती रही मेरा ना के हो गया, हम तो छिक से गए, कति नहीं भूख भाई, बनाइयो भी मतना के रोटी बना दिया, अगना जी सुबह बना देंगे। अच्छा रात्रि के समय दोनों पिता पुत्र चोरी जाते हैं, एक सेठ के मकान में चोरी का पाड़ लगा लिया, यानी कुंडल बनाया सुराख सा, कच्चे मकान होते थे उसमें जाकर इतना सुराख बना लिया कि आदमी सिर देकर अंदर घुस जा। समन कहता है भाई मैं जाऊंगा अंदर, बेटा तू मत आइये,
और बाहर खड़ा रहा, मैं आटा दे दूंगा तुझे और लेकर भाग लेना। सम्मन सेऊ बोला, नहीं पिताजी, आप बड़े हो, आप पकड़े गए तो गांव आपको जो है ना सजा मिलेगी, मैं बालक बाजूंगा, दुनिया ने सोचेंगे बालक था, छोड़ भी दे मन माना रहम हो जा। समन बोला, भाई यहाँ पर रहम का खाता कोई नहीं गए, और जब तू मर गया बेटा हम किसके लागेंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा, तू मत जाना, मैं जाऊं सुपुत्र अंदर। अग नहीं पिताजी, मेरे हाथ जुड़वा ले, आप बाहर खड़े रह। इतना ही कहते ही और सेव अंदर घुस गया पाड़मा का सुराख मा का। तो समन बोला, बेटा ज्यादा मत लेना, ढाई तीन से राटा बस, महात्मा महात्मा का एहतराम नहीं, मुंह भी लाऊंगे सन कह। जाके उसने अंदाजे से ढाई तीन से राटा निकाला और चालन लग गया, जब तराजू के ऊपर पैर टिक गया एक किनारे पर, वह पालड़ी का उसका पलड़ा खड़ाक देश दूसरे पालड़े पर पड़ा, शोर हो गया, सेठ जाग गया, चोर चोर करके और सेव को पकड़ लिया, और सेव चुपचाप पोटली बगा दी, वह बांध रखी थी जो कपड़े माटा, कहने लगे पिताजी मेरे को बनियन पकड़ लिया और आप महाराज जी को भोजन करा खिला दिया, और पाछे बताइयो मैं पकड़ा गया कि रोटी नहीं खाएंगे वह। अब समन लेकर पोटली बांध लिया और लड़का बांध दिया थाम का सेठ ने, अरने बोला सत्संगी तड़का बताऊंगा, थारी करतूतों का बेरा पटेगा, ये थारे गुरुजी आते हैं ना, ये चोरी कराने आते हैं, अब बेरा पटेगा, तुमने काला मुंह करेंगे उनका और कुटेंगे यहाँ पे और सजा करवाएंगे, और निकम्मो गेल तुमने देखिए, सोचा था अब चलो भाई। उधर जब वो लेके गया आटा तो उसकी पत्नी बोली कि लड़का कहाँ है कि उस बानियन पकड़ लिया। अब देखो अपने उसके कहाँ विचार गए उस बहन के कि महाराज जैसे नीत नहीं पहली बार गुरुदेव आए, लड़का पिछाना जागा और गुरुजी का काला मुंह होगा, रोटी खिलाई को उनका जुलूस कटवा दिया। ने बोला बेटा, नो अपने पति से कहती है कि तलवार ले जा और बेटे की नाड़ काट ला, जुलम हो गया कति आज इसके महाराज जैसा तो ऐसा अनर्थ नहीं होगा, गुरुजी की बेइज्जती होगी ना, मारा क्यों जीवना नहीं से। सम्मन लेकर तलवार आ गया, आके कहता है सम्मन सेऊ एक बार दो बात करूं बेटा, नाट बार काट ले, सुबह ना जाने हम मिल पावांगे कि ना मिल पावांगे, राजा के राज से सजा होगी बेटा, दो बात करूं सो आखिरी बार। उधर सेऊ के मन में आती है कि हे बदबंदी छोड़, आज मेरे पिताजी मेरी नाट काट ले, ना तो चाला हो गया, गुरु जी का बेइज्जती बनेगी। एक क्योंकि वो एक रस है, सत्संग का भाव जो है वो ऐसे बना देता है सारे परिवार को। कहने लगे सेठ जी, बार मेरे पिताजी खड़े दो बात करना चाहते हैं, यदि आप कहो तो मैं बात कर लूं, तुम भाग जागा, मैंने सारा बेरा थारी चाल का। अक नहीं सेठ जी, मेरे पैर ने बांध दे करड़ी तरिया और इतना ढीला कर दे मैं गर्दन बार काट लूं, इससे ज्यादा मत करना। सेठ ने सोचा कि कौन सा गना चोरी कर रखी है, की बात हुई, शेर आटा ले गए दो शर और कर दे ढीला, पैर ढीला कर दिया और सिर बाहर निकाल के अब हाथ में करद थी पीछे लकोली, और सम्मन ने अब बेटे की गर्दन के नहीं कट जाए, पीछे नाथ हो गया, आगे हुआ को ना। तो सेव कहने लगा, पिताजी कान कर ले, और कहा मेरी नाड़ काट ले, अब क्यूकर काटे नाड़ के कंधे कट जैसे। ने बोला पिताजी, जब तू मेरा बाप है ना, आज मैंने बेरा फट जाएगा, मैं तेरा पुत्र हूं कि नहीं हूं, अगर मैं तेरा अंश हूं तो मेरी गर्दन काट दे, नहीं तो के मुंह दिखाओगे कल आप और गुरु जी गेला के बनेंगी। अब ये जो बात लड़के के मुंह तो सुनी ना, एकदम गर्दन काट दी छोरे की और सिर न उठा ले गया, सिर को उठाकर नेक की तई दे दिया कि यू लड़के का सिर से, ने बोली ताक में लकवे दे, किसी ने बेरा ना फाटे और बाकी का ऐसा किसी के पिछाड़ में कोई ना आवे। और ने बोली तू वापस जा, छोरे की लाश बाहर पाओगी। वापस गया तो सेठ ने सोचा कत्ल हो गया, वो उठाकर लड़का दूर गेर दिया लाश, अपने मकान से भी पांच सात मकान और दूर है, अपना लीप लाप कैसा कर लिया जैसे चोरी कोई नहीं। सेव गया, समन गया तो सेव की लाश पड़ी, लाके कंधे का उल्टा लिया, जाके कोने में कोठे में गेर के ऊपर बोरी डक दी, और उसकी मां रोटी बनावे, रोटी बना के कती आख्या मासू भी नहीं आने, महसूस भी नहीं होने दिया कि मारा छोरा कटा पड़ा, एक का लड़का वो ही मरिया पड़ा। तीनों महात्मा आके बैठ गए, कबीर भगवान, कमाल और फरीद, तीनों आगे तीन दौड़िया में कसोरिया में रोटी डाल दी। कबीर साहब बोले भाई छह जगह कर दो, इन्हें सारे कट्ठे खावांगे, आज तो प्रसाद बना के कद कद कट्ठे हो आप। नहीं महाराज जी आप खा लो, हम तो रोज ही नहीं खावे हैं, आप कब खाओ मारे। अक नहीं भाई, जो गुरु के ऐसे करे, उन्होंने पांच चा में कर दी। उन्होंने बोला भाई छह में करो इनको। अब भाई उन्हें सोची कि जब बेरा ना पट जाए, ना ना गणी करेंगे, तो छह में डाल के उन्होंने बोला तुम बैठो इस साथ में। अब दोनों बैठ गए। अब कबीर साहब कहते आओ आओ से उजी मिलो ये प्रसाद प्रेम, भाई शीश कटा करें चोरा के और संता के न तकसीम। सेऊ दड़पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत मां, नहीं गरे रानाड़ के ओ सेऊ अगना। बोल सतगुरु देव, उस लड़का के सर दड़के ऊपर शीश जुड़के और पंगत मां बैठा और मात पिता भी नो कलर हटा के देखे, ओ से कोई और से निशान भी को नहीं उस लड़के के। बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब। अरे बोला भाई बंदी छोड़ थारा मौज मौज करे। कबीर साहब बोले इतना धन दे दिया उस सम्मन को, उस थोड़े से समय में उस नगरी का एक नंबर का सेठ हो गया। सेऊ और नेकी, सेऊ और उसकी माँ वो तो पार होगी उसी जन्म में। अब सम्मन था गरबारी, उसके मन में समस्या, उसके मन में एक शंका उत्पन्न होगी कि मैं पापी जीव था, मैंने पिछले जन्म में पुण्य नहीं किया और इसके कारण मैं इतना गरीब हो गया कि गरीब गुरु महाराज के लिए मैंने अपने लड़के का सिर काटना पड़ गया। मतलब वो आखिर तक उसके मन में ये शंका बनी रही कि मैं साहूकार होता ना पैसे वाला तो ये जुल्म नहीं बनता मेरे पे। अंत समय में नए मर गया, अगले जन्म में नौ शेरमा का बादशाह बना दिया कबीर भगवान ने और 80 गंज खजाने दे दिए। 80 खजाने एक एक अरब का खजाना होता है, लाल हीरे पन्ने मिलाकर। लेकिन माया का पुजारी कंजूस गना हो जा, कबीर साहब गए साधु का रूप बनाकर, कंजूस इतना हो गया दवन्नी खर्च ना करे। कबीर साहब जाके कह लगे भाई कि मैं दान पुण्य करया करो भगत जी राजा से। तो नौशेरवा का बादशाह कहता है दान तो कर दू पर चौनी तक होना, मतलब इतना कंजूस हो गया कि पैसे को नहीं, दान तो कर दू महाराज जी। ने बोला बल्ले पुरुषीय के दाब रखे है 80 खजाने दब रहे तेरा, अब ये तो कोयले है महाराज जी, मजाक कर रहे हैं, दोनी ना खर्चनी पड़ेगी। ने बोला बेटा जिसी त्री नीत, नीत नाल मुरादा, जिसी त्री नीत उसे हो जाएंगे। उन्हें सोचा महात्मा जो कहते हैं वो साची हो जाया करे, देख है वो सारे कोयले हो रहे और मारी चंगा रोया खड़ा हो गए। ने बोला भाई दान कर दे तो इसने उसे बना दू, अग जी दान कर दूंगा, अग ज्यादातर दान कर देना, अग ज्यादातर कर दूंगा, देखूंगा अटके फिर उसे हो गए। उस दिन भंडारे ला दिए, खूब दान किया, दान दून कर लिया ना फिर पाछत पिस्तावा, समय भी अच्छा बेवकूफ, एक बोली बूझ के कहने दे सारा खजाना लुटा दिया, अच्छी मौज मारू हो, अच्छे घोड़े खरीदू हो, अंत में मरे गया, उसकी आशंका नहीं निकली, भक्ति भक्ति तो भूल भाल गया। तीसरे जन्म में बलख बुखारे का बादशाह बना दिया। अब देखो लगातार तीन जन्म तो मनुष्य के दिए और बलख बुखारे का जो बादशाह बना, ये लंबा इतिहास है क्योंकि इतना जल्दी ये समाप्त नहीं होता बंदी छोड़ के। कबीर साहब की तो मैंने लीला शुरू भी नहीं कर पाया हूं अभी, कम से कम भी 100 ऐसे प्रमाण हैं, आदमी सुने और चक्कर काटे। ये बलख बुखारे के बादशाह को कैसे सुलझा इसका लंबा इतिहास है, फिर कभी बताएंगे समय मिलेगा। और भाई अपनी सतलोक की साधना हमने करनी चाहिए और पूर्ण मुक्ति का हमने साधन बनाना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि कबीर साहब भी भगवान थे और वो भी भगवान थे। इब कोई तो 10,000 लोन मंजूर कर सके और एक 1,00,000 कर दे, अरे कैसे हम करोड़ कर दे। ये पावर्स होती है, उन्होंने उनकी निष्क्रिय पावर बताई है, ये भी कर सकते हैं और ये जो चाहे सो कर सकते हैं। इनकी पावर सीमित है, भगवान ब्रह्मा विष्णु में इसकी इनकी असीमित पावर है, अनबाउंडेड है। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के माहे, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुन के सत्संग जागी ना तो तू पूछ सवान की। प्रथम जाना है सत्संग के माँ, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुन के सत्संग जागी ना तो तू पूछ सवान की। तीर्थ व्रत या पितर पूजा को ना किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत या पितर पूजा को ना किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत ना सुनना इस मन शैतान की, यो चौकस गल घेरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले में। तेरे कोटि सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना है झूठ रती भरी, तू बात मान ले। काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोई ना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का यो झूठा तनरी तान। इस काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोई ना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तनरी तान। जाप अजपा मिल जावे फिर, सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। जाप अजपा मिल जावे फिर, सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। तेरे कुटी में आना है सुरता, मत ना भटके बेरी, साच कहूं ना झूठ रती भरी, तुम बात मान ले में। सतलोक को चल मेरी सुरता, हिम्मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भरी, तुम बात मान ले में। तेरे कोटी में जा कही सुरता, चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहां प्रगट होवे, उस तय ब्या करवावे। तेरे कुटी में जा कही सुरता, चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहां प्रगट होवे, वात ब्या करवावे। नूरी रूप गुरु का ही होके, तेरे अग अग जावे, सत्यलोक में सेज बिछीवा, वो चौकस लड़ लड़ावे। जन्म मरण मिट जावे है सुरता, हो अमर काया तेरी, साच कहूं ना झूठ रती भरी, तुम बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ए मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भरी, तुम बात मान ले। सतलोक में जा कहे तेरे, सुरता संकट कट जा सारे अगम लोक और अलख लोक के वहां दिख सभी नजारे सतलोक में जा कहे सुरता तेरे संकट कट जा सारे अगम लोक और अलख लोक के वहां दिख सभी नजारे लोक अनामी जावेगी वहां कोना मिले चौबारे आत्मा और परमात्मा वहां कोना रते न्यारे लोक अनामी जावेगी वहां कोना कोए चौबारे आत्मा और परमात्मा वहां कोना रते न्यारे रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वा पूर्ण आनंद लेरी सच कहूं ना झूठ रती भर तू बात मान ले मेरी सतलोक में चल मेरी सुरता ए मत ना लावे देरी सच कहूं ना झूठ रती भर तू बात मान ले मेरी सत साई के प्रथम जाना सत्संग के मां चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की और सुनकर सत्संग जागी ना तो पूछ सवान की पूछ सवान की कुत्ते की पूछ कहते 12 वर्ष तक नड़की में डाकल डाल कर रखी मांस नली में और काटी जब न्यो की नोटेडी पाई वह सिद्धिकरण के लिए डाली थी फिर तो तू ऐसी है अगर सत्संग सुनकर भी आत्मा में सरनाटा नहीं उठा तो कुछ नहीं फायदा फिर तेरा यहां जीने का मनुष्य नहीं पत्थर हो तुम फिर बताती हूं कि तीर्थ व्रत और पितृ पूजा ये कोई ना किससे काम की ये तो 84 का पक्का ठेका ले रही है ट्राट ठोकन की और लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की और भगवान की भी मत नहीं बनेगी बात है और मत सुनना मन शैतान की चौकस गाल है गेरी काल लोक में कष्ट उठावा ये कोई ना तेरा ठिकाना यानी अपना स्थान है अपना स्थान सतलोक है वहीं जाकर हम सुखी होंगे जिस सुख को ढूंढ रहे हैं ना राज में सुख ना स्वर्ग में सुख ना बेटिया में सुख ना बेटिया में सुख और ना संतान जायदाद में सुख और ना राज में सुख राजा जितना दुखी नहीं धरती पे हमने गणा सुखी दिखे देवता में सुख को ना ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी को ना कृष्ण जी ने यहाँ आना पड़ा और कितने संकट काटे लीला देखो उनकी एक दिन भी सुख का सांस लिया होते हमारे लिए वो महान दिखे लेकिन सुखी कोई नहीं यहाँ पे सुख है सतलोक में वहां पर हमारा ऐसा जन्म होगा जैसे यहाँ हो गया देव शरीर मिलेगा इन देवताओं से बढ़िया होगा बाल बच्चे होंगे पर वहां मरण कोई ना हम मरना नहीं चाहते क्यों नहीं चाहते कि हम उस लोक से आए हैं जहां पर कभी मरते कोई ना हमने क्यों बेरा ना मरे जब पता होती मर रहे हैं फिर भी नहीं मरना चाह रहे क्योंकि हम ऐसे लोक से आए थे जहां प्राणी मरते कोई ना अब वो डुकलाड़ा मारे यहाँ कुछ भी कोई ना यहाँ ना देवता स्थाई ना ब्रह्मा विष्णु महेश स्थाई इनके उपासक स्थाई कैसे रहेंगे या चांदनी टूटती देख चाला पैट रहा अब बंदी छोड़ कहती है नाम लेके जाप अजप्पा नाम आपको मिलेगा जिसको सतनाम कहते हैं और सार शब्द है ना वो काटे फिर सारे जेवड़े रस्से बांध रखे काल में और फिर कहती है तिरकुटी में आना कदे फिर बेरी जा खड़ी हो हाथ पूजन खाते फिर वहां मत जाना बोल कभी फिर कहे तिरकुटी में जाके सुरता चारों ओर लिखावे ये वो कॉमन एयरपोर्ट है जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है वहां जावे अपने नंबर का जहाज ढूंढे कौन सा नंबर मिल रहा है हमने वहां पर बंदी छोड़ कबीर साहब सतपुरुष नूरी कहते हैं नूरी शब्द गुरु शब्द रूप में वहां प्रकट होंगे आपके सामने और नौके फिर उस तय ब्याह करवा उसका पल्ला पकड़ ले छोड़िए मत ना चाहे कितने कभी बोझड़ा मैं कह जा और चाहे वो राई राई जा उसको छोड़ना नहीं है तने इसको कहते हैं ब्याह करवाना और नूरी रूप गुरु का होकर तेरे आगे आगे जावे सतलोक में सेज बिछी वहां चौकस लाडल वहां असली सुखता में वहां आत्मा और परमात्मा का और वहां जाकर भी